साहब, बच्चों में आर्थराइटिस, ये इसकी वजह क्या है, और फिर इंशाल्लाह तफसीली तौर पर आएंगे उसके बाद।
जी बिल्कुल, हम जब आर्थराइटिस का जिक्र आता है तो हम फौरी तौर पे हमारे जहन में बूढ़े अफराद आते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे बुढ़ापा आता है उम्र ज़्यादा होती है तो घुटनों का मसला या जोड़ों में दर्दें, इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। तो आर्थराइटिस असल में दो अल्फाज का मजमू है, आर्थरोन जोड़ से लिया गया है, और फिर जो है ITS TIS जो है वो मेडिकल की सलाह में सोजश वगैरह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मसला सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बुढ़ापे में ही नहीं होता, जिस तरह आपने बात की कि नौजवानों में, और ये बच्चों में भी हो सकता है, और उसी पे हम आज बात करेंगे। अब अगर वजह पे बात की जाए तो वजह इसकी जो है कोई ऐसी खास नहीं है कि जिसको हम यकीनी तौर पे कहें कि ये इसकी वजह है। इसकी वजूहात जो हैं जिन पे शक किया जाता है, एक ये होता है कि हमारे जिस्म में एक मुदाफ़ियाती, हमारे जिस्म का एक निज़ाम होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ इसको कहते हैं, कि उसमें होता ये है कि जब कोई बाहर से जरासीम हमलावर होते हैं तो हमारा जिस्म खुदकार तरीके से उसका दिफा करना शुरू कर देता है। तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ वगैरह जो बनते हैं वो गलती से जिस्म के अपने ही जो हिस्से होते हैं, अपने ही सेल्स, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है एक इसकी वजह ये कहा जाता है। जो दूसरी वजूहात जिन पे शक किया जाता है वो जेनेटिकली होती है, कि विरासती तौर पे जो है, मौरूसी तौर पे ऐसे जो हैं वो जीन्स कुछ बाज़ ख़ानदानों में पाए जाते हैं, बाज़ अफराद में वो मुंतकिल हुए होते हैं, कि वो ख़ास किस्म के अफराद जो हैं इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होते हैं। या फिर ये होता है कि किसी ख़ास माहौल में जब वो होते हैं तो वो जो है वो माहौल उन जीन्स को या उस जो है वो जरासीम को उनको मुतहर्रिक करता है, जिसकी वजह से ये मसला जो है ये सामने आता है। तो इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिन पे शक किया जाता है। ये जो आर्थराइटिस है बच्चों में भी, बच्चों में तो मखसूस किस्म के हैं जो आर्थराइटिस की मुख्तलिफ अकसाम हैं, बड़ों में ज़्यादातर की वजह जो है वो अब ज़ाहरी तौर पे तो हमें वो नज़र आ रही होती है कि कोई चोट लगी, उसकी वजह से, चोट लगने की वजह से सोजश हुई, वो जोड़ का जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वो ख़राब हुए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अंदर स्नाइविल फ्लूइड जो है, फिर इसकी अकसाम बहुत ज़्यादा हैं, अब 100 से ज़्यादा इसकी अकसाम है, और बड़ा एक पेचीदा ये मरहला होता है कि इसकी तशखीस देना, इसके लिए मखसूस रोमटोलोजिस्ट जो है मेडिकल का एक जो है अलग से शोबा है जो इन इसकी तशखीस देता है। बाकी इसके जो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए एक पूरी टीम वर्क, मुख्तलिफ जो मेडिकल में मसले पेश आते हैं तो एक उसको कंट्रोल करना एक टीम का काम होता है। जिस तरह ये वाले जो आर्थराइटिस के मसले होते हैं, या हमारे जो आज का प्रोग्राम है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चों में जो आर्थराइटिस है, इसमें भी रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो पीडियाट्रिक्स रूमेटोलॉजिस्ट, जो बच्चों का मखसूस बच्चों का रूमेटोलॉजिस्ट होता है वो हो गया, फिर फिजियोथेरापिस्ट हो गया या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गया, ये जो लोग हैं ये मिल के एक पूरी टीम के तौर पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेडिकल दूसरे स्पेशलिस्ट पास का तो ये होता है कि बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी की जो इलामत हमारे सामने आ रही होती हैं वो सिर्फ एक बीमारी की नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारी बीमारी को वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, यानी उसकी नुमाइंदगी करती हैं, तो इसलिए नहीं होती है कि बीमारी असल में है कौन सी।
है कौन सी डॉक्टर साहब, खुद एक तो बच्चों में कौन से बच्चे जद में होते हैं आर्थराइटिस के, और पता कैसे चले?
अब देखें, बच्चे की जो डेफिनेशन है वो तो हम मुख्तलिफ जो है उम्र के लिहाज से हम स्टेजेस में तो डिवाइड कर लेते हैं उसको, लेकिन ये जो है जो बच्चे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आज का हमारा मौजू है इसका शिकार होते हैं, उनकी उम्र 1 साल से, यानी पैदाइश से लेके 16 साल की उम्र तक, या दूसरे अल्फाज में इस तरह कह लें कि 16 साल से या 16 साल से कम उम्र बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो इसमें होता ये है कि बच्चा दर्द का शिकार करता है आमतौर पे, चूँकि बच्चा खुद भी नहीं वो सब सारी वजूहात बता रहा होता कि अंदर है मसला क्या है उसको, तो जो उसके इर्द गिर्द के जो घर के अफराद हो के या नर्स हो गई या घर में काम करने वाले जो अफराद हैं या स्कूल में टीचर्स वगैरह या उसके बच्चे के दोस्त, वो इस चीज़ को जो है वो महसूस कर रहे होते हैं या नोट करते हैं कि बच्चा लंगड़ा के चलता है, या जब सुबह उठता है तो उसका उठने को दिल नहीं कर रहा होता, या सुबह जब उठता है तो उसके जोड़ जो है उसमें एक तरह की सख्ती पाई जाती है। तो अब दूसरी जो इसकी इलामत होती हैं उसमें जोड़ों का सुर्ख होना, इसकी बाज़ अक़साम होती हैं जिसमें आँखों को मसला बनता है, जोड़ जो है वो गर्म गर्म होता है, उसमें सख्ती के साथ जो है जो हरकत का उसमें दायरा होता है वो महदूद हो रहा होता है, एक बहुत एक थकावट की सी जो है एक इस्तराब सी कैफियत बच्चे पे तारी होती है। अब इसमें जो इसकी इसी इलामात की बुनियाद पे या मुख्तलिफ जिसमें बच्चे इसका शिकार होते हैं तो उसको मुख्तलिफ अकसाम में भी तकसीम किया गया है। एक होती है ओलिगो आर्टिकुलर या पासी आर्टिकुलर, उसमें चार या चार से कम जोड़ उसमें मुबतला होते हैं और ज़्यादातर जो है वो बड़े जोड़ जिस तरह घुटने वाला जोड़ है ये इस तरह के जोड़ इसमें मुबतला हो रहे होते हैं। इसमें होता ये कि इसकी तशखीस के लिए ये किया जाता है कि वो जो मसला है बच्चे को वो तकरीबन वो जो इलामात उसमें पाई जा रही होती हैं वो लगातार 6 हफ्ते जो हैं वो लगातार उसमें इलामात जाहिर हो रही होती हैं। तो इस वाली जो किस्म है इसके साथ ये ज़्यादातर जो है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो बच्चे जो इस बीमारी में शिकार होते हैं उसमें ज़्यादा जो जिन बच्चों में ये मसला पाया जाता है उसमें ये किस्म ज़्यादा होती है। इसमें आँख का भी मसला होता है, तकरीबन 20% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है यूवीआइटिस जो है आंख में एक सुर्खी सी पाई जाती है, एक सोजिश सी होती है बच्चों में, तो ये वाला एक मसला हो गया। फिर होता है कि दूसरी जो इसकी एक किस्म है कि पोली आर्टिकुलर, उसमें 5 जोड़ या 5 से ज़्यादा जोड़ उसमें मुतासर होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो छोटे जोड़ हैं हाथों वगैरह के जिस तरह उंगलियों के जोड़ हो गए ये इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। इसमें भी मकसूद ख़ास तौर पर ये होता है कि बच्चा इस तरह का शिकार बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है, तो इस तरह की इलामात इसमें भी लगातार वही देखना होता है कि ज़्यादा हफ्तों के लिए जो है वो बच्चे में वो इलामात पाई जाती हैं। तो आखिरी इसकी किस्म है सिस्टमिक, जिसमें जिस्म के अंदर के जो सिस्टम हैं जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे होते हैं। इसमें एक बड़ी जो है एक निशानी बच्चे के जिस्म पे ख़ास तौर पे ये जो दरमियान वाला हिस्सा धड़ वाला हिस्सा होता है इसके सामने पीछे कमर पे या जो टांगों का ऊपर वाला धड़ के करीब वाला जो हिस्सा होता है प्रॉक्सिमल उसको मेडिकल की सलाह में इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते हैं, या बाजुओं को ले लें तो बाजुओं का जो ऊपर वाले हिस्से हैं इस पे सुर्ख धब्बे जो हैं वो जाहिर हो रहे होते हैं। वो बाज जो हैं वो पीले किस्म के होते हैं, पिंक के हैं, उस तरह के भी जाहिर हो रहे होते हैं। तो इसके साथ जो है बच्चे को बुखार रहता है और बुखार तकरीबन उसका जो दर्ज हरारत है 101 डिग्री फारेनहाइट या उससे ऊपर लगा लें, और ये बुखार जो है इस किस्म में तकरीबन 2 हफ्ते लगातार रहता है। तो इस तरह की जब इलामत बच्चे में पाई जा रही होती हैं तो उसके साथ जो है वो जोड़ भी दर्द, अब देखें जोड़ दर्द हो या आमतौर पर ये होता है कि बच्चा जब कहीं पे गिरता है, कोई पैर में मोच आ गई, किसी चोट लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा शदीद थकावट की वजह से, या वैसे कोई नज़ला ज़ुकाम और उसके साथ गला वगैरह ख़राब होता है तो उसकी वजह से बुखार होता है, तो इस तरह की इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन देखा जी ये जाता है कि
डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, हमारे साथी बता रहे हैं हम लोगों को एक वक्फा लेना है, फिर गुफ्तगू उसके बाद हम लोग जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशखीस के बारे में आप बात कर रहे थे।
लेकिन तशखीस जो है बिल्कुल दूसरी बीमारियों की तरह जो इलामात को देखा जाता है, एक उसकी फिजिकल हिस्ट्री ली जाती है कि पहले उसको मसला जो है ख़ानदान में उसकी जो है उसकी हिस्ट्री कैसी है, कि आया जिस तरह हमने पहले वक्फे में बात की थी कि बास मौरूसी असरात भी होते हैं कि विरासत में वो जीन्स खास तरह के वो आ रहे होते हैं, तो अगर किसी ख़ानदान में इस तरह की बीमारी पहले से है तो इस तरह की इलामात जाहिर हो रही हैं तो उस पर ज़्यादा शक किया जाता है। फिर इलामात के साथ जो है लेबॉरेटरी टेस्ट इसमें काफ़ी मदद देते हैं, ANA टेस्ट होता है तो वो ज़्यादातर जो है इसमें पॉजिटिव आता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। फिर जो दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए साइड पे करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट उनको देखा जाता है, वो फिजिशियन का काम होता है, रूमेटोलॉजिस्ट का काम होता है, लेकिन आम जो है माशरे के एक आम फर्द के लिए जो बात ज़रूरी है कि अगर इस तरह की जो इलामात हैं वो आपकी बच्ची को ज़ाहिर हो रही हैं और जिनका दौरानिया है वो 6 हफ्ते तक जा रहा है या 2 हफ्ते लगातार बुखार उसको रहता है और साथ उसके जोड़ दर्द कर रहे हैं या आंखों में सोजिश है, जिस्म पे सुर्ख या पिंक धब्बे जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उसको आप किसी करीबी, आम तौर पे लोग ये होता है कि उसको सिर्फ बुखार की हद तक समझ के एक सादा सा जो इसका इलाज करवाना उस तक ही महदूद ना रहें, और इसके साथ जो है मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं जो मुआलिज है उसमें भी चूंकि एक आम जो जनरल फिजिशियन होता है उसका जो इल्म है किसी खास शोबे में बहुत ज़्यादा वसी नहीं होता या दकीक नहीं होता, उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह का जब केस आता है तो उसको फौरी तौर पे मुतलका जो उसका असल मुआलिज है जो बेहतर तौर पे उसकी तशखीस और उसको कंट्रोल कर सकता है उसको रेफर कर दे। लेकिन वालदैन या घर के जो अफराद हैं उनको भी पूरी तरह समझ होनी चाहिए कि इस तरह का अगर मसला बनता है, इतनी लंबे अरसे तक बीमारी जो है वो जाती है, तो बच्चे को रोमाटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ और उसकी बकायदा जो है वो तशखीस करें। अब इलाज के तौर पे देखें जो ये मसला होता है इसमें दर्द जो है एक बड़ी वजह होती है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ फूले हुए हैं, एक सुर्खी या गर्मी पाई जा रही है, बच्चा हरकत नहीं कर रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके फंक्शन को, जिस्म के पूरे को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बच्चा उस खौफ की वजह से वो हरकत ही नहीं करता तो उसका जोड़ जो है वक्त के साथ साथ उसके पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, उसके जोड़ जो हैं वो खराबी का शिकार होते जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि रोमाटोलॉजिस्ट या उसके साथ जो है वो फिजियोथेरापिस्ट उसकी ज़ेरे निगरानी ये मरीज़ रहे। और उसके लिए क्या किया जाता है कि दर्द को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर मुख्तलिफ तरह की जो दवाइयाँ जनरली हम एनसीड्स वगैरह नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसकी मिसाल एस्पिरिन या ब्रूफीन है, इब्तदाई तौर पर इनको दिया जाता है, फिर दवाइयाँ मुख्तलिफ तरह की होती हैं जो बीमारी का जो एक रास्ता होता है डिजीज मोडिफाइंग ड्रग्स जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल की करवाई जाती हैं, वो इस्तेमाल इसलिए करवाते हैं ताकि तेज़ी के साथ जो बीमारी के असरात की वजह से जोड़ ख़राब हो रहा है उसके असरात को कम से कम किया जाए, तो वो उसके खराबी के मरहले को जो है वो बहुत आहिस्ता कर देती हैं दवाई के असर की वजह से। फिर जो सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं जिस तरह कोई स्प्लिंट वगैरह ब्रेस वगैरह इस्तेमाल करवा लें, तो उसका मकसद ये होता है कि जोड़ जो ख़राब हो रहा है या अगर पट्टे कमज़ोर हो गए हैं तो जोड़ पे हरकत करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि अगर इस तरह की हालत होगी तो जोड़ के अंदर कार्टिलेज होता है हड्डियों के ऊपर, तो अगर उस पर जोर ज़्यादा पड़ता है तो उस कार्टिलेज को ख़राब होने की जो उसकी शिद्दत है उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है जो उसमें मदद दें, उसको चलने में भी मदद दें, और रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, बस खास हालतें होती हैं, अब देखें बस खास मखसूस हालतों में हरकत करवाई जाती है, बाज़ मखसूस हालात में आराम दिया जाता है, ये जो है इसलिए ये फिजियोथेरापिस्ट का काम है या दूसरे मालिज हैं उनका काम है कि उसको हदायत देना, उनकी रहनुमाई करना मरीज़ की कि किस हालत में उनको बच्चे को रेस्ट देनी है, कितनी देर के लिए रेस्ट देना है और किस वक्त जो है उसको एक्सरसाइज करवानी है। अब रेस्ट में भी ये होता है कि क्योंकि इज़्तिराब की कैफियत होती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, अगर थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए तो वो एक जिस्म को फिर से एक तरोताज़ा होने में बहुत मदद दे रहा होता है, और स्विमिंग और ख़ास तौर पे थोड़े से गर्म पानी में जिस तरह जोड़ों को रखना वो दर्द को कंट्रोल करने में वो भी मदद दे रहा होता है, और स्विमिंग जो आप स्विमिंग पूल में जाके उसको चलना और अगर कोई तैराकी कर सकता है बच्चा तो उससे वो करवाना, तो उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ता है।
डॉक्टर साहब ये बीमारी जो है आपने कहा कि ये तमाम रास्ते इख्तियार कर लिए और इंशाल्लाह बेहतरी आ गई, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है यानी 16 साल की उम्र से 20 साल तक पहुंच जाता है, 25 साल तक बाकी रहती है बीमारी यानी?
देखें बहुत सारे जो हैं بیماری کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس لیے اس کی بر وقت تشخیص جو ہے اس طرح کی جو بیماری ہیں اس کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر تو بر وقت تشخیص ہوگی اس میں اس کو جوڑوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، پٹھوں کی جو اصل حالت ہے آپ اس کا جو بچے کا ایک فنکشن ہے اس کو زیر نگرانی رکھتے ہیں تو اس کے جو بیماری کے برے اثرات ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن 30% بدقسمت جو ہیں وہ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی اس بیماری کے اثرات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بر وقت اس کی تشخیص دی جائے. مثال کے طور پہ جس طرح مثلا آنکھوں کا اگر مثال لی جائے تو اس کی جو پہلی قسم ہوتی ہے اولیگوئیپاسی، اس میں آنکھوں کی سوزش ہوتی ہے. تو یہ اب چونکہ آنکھوں کے ڈاکٹر سے ان مریضوں کو خاص طور پہ ہدایت ہوتی ہے کہ بچے کو آنکھوں کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے، جس ٹیم کی ہم نے بات کی تھی تو اس میں آنکھوں کا ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل نے کافی ترقی کی ہے تو آنکھوں والے مسئلے کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تقریباً 20% جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو حتیٰ جن کو جو ہے وہ اندھے پن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں.